मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 14 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अनिल कुमार कानपुर उत्तर प्रदेश से, संजय कुमार बक्सर बिहार से, मुकेश गर्ग वास्को डेगामा गोवा से और सौरभ कुमार झा दरभंगा बिहार से। तो अनिल, संजय, मुकेश और सौरभ आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे जो सेवंथ बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें एक बात की याद दिलाना चाहूंगा और वह बात फ्रेंड्स यह है कि आपको ध्यान होगा कि लास्ट में जब हम लोगों की क्लासेस खत्म होने लगी थी तो मैंने आपको आगाह किया था, यूं कह लीजिए कि रिक्वेस्ट भी किया था या यूं कह लीजिए कि चेतावनी भी दी थी, और वो ये थी कि क्लासेस खत्म होने के बाद जब आप अपने घरों को लौट जाएंगे तो प्लीज एक महीने का समय आप थोड़ा सा और विशेष रूप से निकालें। थोड़ा सा विशेष रूप का कहने का मेरा मतलब है कि इससे थोड़ी सी प्राथमिकता में रखें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी में लग जाएं, छुट्टी लेकर के यह काम करें, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी प्राथमिकता में इसे रखें। प्राथमिकता में रखने का सवाल का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि जो आपको यहां तरीका बताया गया है पढ़ने का, आपको मालूम है कि चार सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें की हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो चार मुख्य स्तंभ होते हैं। इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इनके बेसिक्स पर कैसे कमांड बनानी चाहिए, बहुत विस्तार से हम लोगों ने इस पर बातें की हैं और इसके प्रभाव का मूल्यांकन भी क्लास में किया गया है जिसमें आप लोगों ने कमाल करके दिखाया है। तो मित्रों ये तो यहां हो गया, ठीक है, आप यहां से ये समझ कर चले गए हैं, लेकिन ये आपकी चेतना का हिस्सा बन जाए, आपके तौर तरीके में ढल जाए, इसके लिए जरूरी है कि कुछ दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करें, इस पैटर्न को अपनाएं। और इस पैटर्न को अपनाने का एक ही रास्ता हो सकता है और वो यह कि जो तरीका आपको यहां बताया गया था प्लीज उसी तरीके से आप इन विषयों को पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय निकालें। मित्रों यह बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि यदि आपने इसे एक महीना और दे दिया तो आपकी जो नींव है इतनी पुख्ता हो जाएगी, इतनी पुख्ता हो जाएगी कि आप खुद उसके कमाल को महसूस करेंगे। और यदि आपने इस एक महीने का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं ये तो नहीं कहता कि न्यू एकदम कमजोर हो जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो आप 15 दिन पढ़ करके गए हैं वो अपना कमाल दिखाएगी दिखाएगी, लेकिन आप जो इसे और मजबूती दे सकते थे आप डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो मित्रों प्लीज मैं फिर से आप सबको याद दिला रहा हूं कि आपको पढ़ने का जो पैटर्न बताया गया है उसे प्रैक्टिस में लाने में कोई कोताही न दिखाएं। दोस्तों आइए अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी, दो न्यूज सबसे महत्वपूर्ण है, दो खबरें सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हीं को लेकर के मैं आज आपसे बात भी करूंगा और इन दोनों में आप विनिर्माण क्षेत्र को एक तरीके से आज के मुख्य विषय के रूप में ले सकते हैं। और जो दूसरी खबर है वो एशियान देशों में जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं उनको लेकर के, उसको लेकर के भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन जो मुख्य विषय होगा वो हमारा विनिर्माण क्षेत्र का होगा। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आसियान देशों में जो भारत अभी जो भाग ले रहा है उसको लेकर के अब हम कैसे चीजों को आगे दूसरे नजरिए से देखें। फ्रेंड्स कल मैंने इसके बारे में, आसियान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, साथ ही मैंने एपेक के बारे में भी आपको बताया था। मैंने बताया था कि ये दोनों टॉपिक आपके लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देखिए कि जो इसमें आसियान है और जो एपेक है, इनफैक्ट दोनों ये मानकर के चलिए कि कहीं ना कहीं पैरेलल है, समानांतर है, क्योंकि दोनों में देखिए ए है, ए का मतलब है एशिया और भारत एशिया महाद्वीप में है। और आपको मालूम है कि अभी पूरी की पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, उत्तरी कोरिया को तो छोड़ दीजिए कि वो तो एक तरफा अपना मामला कर ही रहा है, लेकिन जो पावर स्ट्रगल है वो बेसिकली अमेरिका वर्सेस चाइना में है, है ना। प्रशियत किनारे हो गया, किसी जमाने में हम लोगों के समय में हम लोग इंडिया या सॉरी आपके रशिया और अमेरिका की बात करते थे, अब होने लगा अमेरिका और चाइना की बात हो रही है। चाइना भी एशिया में है, भारत भी एशिया में है, यानी सीधे सीधे चाइना और भारत आमने सामने हैं और ये दोनों इन दोनों सम्मेलनों में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी इसमें हैं। और फिर आपने देखा कि जो पैसिफिक क्षेत्र है, कल आपने देखा उस पैसिफिक क्षेत्र में जापान जैसे देश भी है, रूस जैसे देश भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, मतलब काफी महत्वपूर्ण देश है। और भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हिंद महासागर, उधर चाइना सी को ले लीजिए तो प्रशांत महासागर से हमारा बहुत बड़ा व्यापार होता है और हमारी सुरक्षा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो गया है मित्रों। अब आप देखिए कि हम जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका हम आधार क्या लेते हैं, कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। घटनाएं रोज घट रही हैं, कितनों को आप पकड़ करके चलेंगे, कितनों को याद करेंगे, कितनों को समझेंगे। हम थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण को समझ लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप अभी 2017 के मेंस के पेपर को उठा करके देखें, सेकेंड पेपर जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आप देखिए कि उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। आपकी नजर इन बातों पर होनी चाहिए अगर आप सही में एक रणनीति के तहत प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो। और अगर वैसे ही है कि जो भी सामने आ रहा है पढ़ना है और खूब मेहनत करनी है, तो फिर वो आपको अपने ढंग से निर्णय लेने का बिल्कुल पूरा अधिकार है दोस्तों। देखिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा क्या प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में लिखिए, ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है, इसमें इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। आपको ध्यान होगा कि मैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में कहता आ रहा हूं कि उसमें भारत इनफैक्ट ज्यादातर मामलों में होगा ही, और अगर वह देश पड़ोस का है तो उसमें भारत के बिना कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, राइट। इसका मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, ध्यान दीजिए कि एपेक और एशियन दोनों में भारत भी है, चाइना भी है, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों में भी अब कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है। आप बहुत अच्छे तरीके से लगातार अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हमारी अपनी रक्षा मंत्री गई हैं, हमारे देश का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, और उसमें चाइना उंगली उठा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के बीच बीच में तनावपूर्ण वक्तव्य और स्थितियां आती रहती हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे में क्या हुआ है। एपेक की बात अब मैं छोड़ता हूं फ्रेंड्स, हम अब एशियन सम्मेलन में आते हैं। एपेक में इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वो घटी है, चार देशों ने आपस में मिलकर बात की है, चार देशों ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। ये चार देश कौन से हैं? अमेरिका, याद रखें अमेरिका, नंबर 2 आपके जापान, अमेरिका, जापान, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है भारत। ये चतुष्कोणीय बैठक हुई, चार देशों की बैठक हुई। अब आप देखिए कि अमेरिका अपने आप में एक सुपर पावर है, जापान इंडस्ट्रियल नेशन है, बहुत बड़ा शक्तिशाली देश हो गया है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया। आप नक्शे में देखिए तो रूस उस अमेरिका उस साइड से शुरू होता है, ईस्ट पार्ट पर जापान हो जाता है, साउथ पार्ट पर, साउथ ईस्ट पर आप कह लीजिए कि इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और इस दिशा में भारत हो जाता है। चारों दिशाओं के चारों देश हैं जिसमें ये पैसिफिक रीजन शामिल है, और उसी का हिस्सा है आपका चाइना, चाहे वो साउथ चाइना सी हो चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो। तो अब आपको शायद पहली बार पता लगा होगा, या हो सकता है पहले मालूम भी हो, कि चार देशों की यह बैठक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी बात है कि इस बैठक में जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मुक्त नेविगेशन की फैसिलिटी हो, मुक्त आवागमन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता है। और आपको मालूम है कि चाइना कैसे लगातार साउथ चाइना सी में अपने अधिकार की घोषणा करता रहा है, और उस तरह से वो कोशिशें भी करता है, जबकि उसके आसपास के जो राष्ट्र हैं, जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करते। और बाद में आपने देखा कि चाइना ने इस बात पर भी एतराज जताया है कि इन चार देशों की बैठक हुई और उसमें चाइना को शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के मित्रों, यह है कि अब चाइना के एक चाइना एक तरफ है और दूसरी तरफ इन चार राष्ट्रों का एक अच्छा एक अच्छी मित्रता, गठबंधन तो नहीं कहना चाहिए, एक अच्छी मित्रता स्थापित हो गई है और चारों इसके पक्ष में है कि नहीं, ये जो चाइना सी है या प्रशांत क्षेत्र है या कह दीजिए हिंद प्रशांत क्षेत्र है, बात एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप नक्शे में देखेंगे तो, आप सिर्फ अखबार में पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सब अलग अलग है, नक्शे में देखेंगे तो लगेगा कहां कुछ भी जाए हैं सब एक ही, कि इन क्षेत्रों पे सभी मुक्त परिवहन व्यवस्था के पक्ष में हैं और इसका निश्चित रूप से नैतिक दबाव चाइना पर पड़ेगा भी। और वैसे चाइना भी अपने वन बेल्ट वन रोड को लेकर के जो दबदबा कायम करना चाह रहा इस क्षेत्र में, उसमें थोड़ा सा संतुलन आएगा। अब जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इस एक्सप्लेनेशन को जो अभी मैंने प्रश्न पढ़ करके सुनाया था, उस संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए तो आपको यह प्रश्न जो पूछा गया है काफी कुछ सरल मालूम पड़ने लगेगा। मित्रों, आइए अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं, और वह है हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो उन्होंने एशियान में कहा है, और वो कहा है कि भारत बहुत जल्दी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बन जाएगा, यानी कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। राइट दोस्तों, जो मैन्युफैक्चर का जो सेक्टर है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दो सबसे बड़े रीजन है, नंबर वन, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, 125 करोड़ लोगों का मार्केट है। दूसरा, 125 करोड़125 करोड़ लोग हैं, और इस 125 करोड़ का मतलब है हमारे पास 250 करोड़ हाथ भी हैं, यानी कि लेबर हैं, चीप लेबर है, सस्ते लेबर हैं, सस्ते श्रमिक, और 125 करोड़ लोगों का विशाल बाजार मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए वरदान साबित हो सकता है। और वैसे भी जब हम आंकड़े देखते हैं तो आंकड़े भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा जो जीडीपी है, अभी भी हमारे जीडीपी में जो 16% है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, जिसे 2022 तक 25% ले जाने की कोशिश हो रही है, हालांकि चाइना का हमसे ज्यादा है। राइट हाँ मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको फिर से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट होने के पीछे डेफिनेटली जो सबसे बड़ा कारण है वो है अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की आप कह लीजिए कि योगदान। भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को आधार बनाकर यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखिए कि क्या है फ्रेंड, जो 2017 के मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया है विनिर्माण क्षेत्र को। ऊपर से लगता है कि ये कठिन प्रश्न होगा, लेकिन जरा सा भी आप थोड़ी सी भी बेसिक चीजों को जानते हैं तो वही प्रश्न आपके लिए सरल हो जाता है। मैं उसी को थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपायों को सुझाइए 150 शब्दों में। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, सजेस्ट मेजर्स फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। ये प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो 7th बैच में हमारे जो स्टूडेंट आए थे, उन्हें शायद इस प्रश्न को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि मैंने लेबर की क्या भूमिका होती है पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसकी बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक तरीके से चर्चा की थी। तो अब आप देखिए कि फ्रेंड्स, अब हम प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को आइए थोड़े से कुछ बेसिक्स के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनफैक्ट महत्व उसको दिया जा रहा है और उसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है। अभी जीडीपी में इसका 16% कंट्रीब्यूशन है और यह माना जा रहा है कि 2022 तक जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 25% हो जाएगा। और यहां तक मानकर चला जा रहा है फ्रेंड्स कि 2020 तक, मतलब अब ज्यादा वक्त नहीं है, 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भारत का स्थान है, कुछ लोग कहते हैं कि तीसरा हो जाएगा दुनिया में, कुछ लोग कहते हैं कि पांचवा हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है। रोजगार के लिहाज से लगभग 10, अब ये माना जा रहा है कि 2022 तक 10 करोड़ लोग को और रोजगार दिया जा सकेगा 2022 तक, यानी कि 10 करोड़ लोग इसमें टोटल शामिल होंगे। ये भी एक बड़ी बात है। आपको ध्यान होगा कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो अभियान शुरू किया है, उसका मतलब यह है कि भारत में आइए और बनाइए। यह भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने का एक साधन है। आइए और बनाइए, अपने यहां से बनाकर मत भेजिए। और इस बार के बजट में कई ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं और उसके बाद से बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अब आकर अपना सामान बनाने के लिए तैयार हो रही हैं, जिनमें आप वोल्वो, जो स्वीडन की कंपनी है, वोल्वो है, बोइंग है, तोशिबा है, ये सारी कंपनियां, एप्पल इंक भी है, जो भारत में आकर के निर्माण करने के लिए तैयार हो रही है। इसी में मित्रों एक डिफेंस का जो सेक्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री में शुरू किया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल, आपने सुना है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। ये जो डिफेंस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, ये बेसिकली यह है कि हमारे भारत के प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, भारत की प्राइवेट कंपनीज होगी प्लस फॉरेन की कंपनी होगी, दोनों कंपनी मिलकर और डिफेंस के क्षेत्र में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगी, फिर वो पनडुब्बी सबमरीन बनाएंगी, फाइटर जेट बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे, इस तरह के निर्माण वो करेंगे। तो इससे भी काफी कुछ, ये कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने की संभावना है। फिर आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर लगातार काम चल रहा है, स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है, जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी के अभी चाहे जो भी संकट दिखाई दे रहे हों, लोगों को भविष्य के प्रति बड़ी संभावनाएं इसमें दिखाई देती हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में, प्रोत्साहित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मित्रों ये थोड़ी सी मैंने विनिर्माण क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। और अब जैसा कि न्यूज में ही प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि लगभग 90% क्षेत्र में अब विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए हैं, 90% सेक्टर विदेशी निवेशकों के लिए ओपन कर दिए गए, बहुत बड़ी बात है। केवल 10% ही बचा है जो किसी वजह से सरकार अपने पास रखना चाहती है। तो मित्रों ये मुख्य विषय के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की है। एक बात मैं अपने 7th बैच के स्टूडेंट से और कहना चाहूंगा कि उन्होंने न्यूज में एक सेंटेंस सुना दिल्ली के मौसम को लेकर, यह है कि जो जलाया जा रहा है हरियाणा उत्तर प्रदेश में पराली, उसकी वजह से दिल्ली का की जो वायु है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसी के साथ ही साथ एक और सेंटेंस उन्होंने सुना है और वो सेंटेंस ये है कि ये जो वायु प्रदूषण है दिल्ली में, उसका एक कारण है मौसम में आर्द्रता की उच्च स्तर का होना, मौसम में आर्द्रता के उच्च स्तर का होना, यानी कि वहां का जो मौसम है उसमें जो आर्द्रता है वो थोड़े से हाई लेवल की है। मित्रों बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी पर तो हम लोगों ने काफी बातें की हैं, जो हमने बातें की हैं उसके आधार पर आप इस लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि मौसम में आर्द्रता का अगर स्तर उच्च हो गया है तो उसका अब प्रदूषण से क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। और बल्कि यह सोचने के बाद अगर आप लोग अपनी एक एक दो दो लाइन मुझे लिख करके भेज सकेंगे तो मुझे खुशी भी होगी कि हां मैं समझ सकूंगा कि आपने विषय को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों अब आते हैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं क्लिपिंग्स, आप सब देख लीजिएगा। जहां तक ईमेल का सवाल है, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: बाल गोविंद दुबे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत यादव, चंदन सिंह कुंवर, आलिश बानो, शुभम गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, शिल्पी कुमारी, विकास कुमार यादव, शाश्वत अग्रवाल, अंकित, सोहन कुमार ठाकुर, पीयूष कुमार सिंह छपरा बिहार से और ऋषभ, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।